श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन 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 यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन हा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ना कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय 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 गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय
ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की ताई गौर प्रणाम।
ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगण ललिताश्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कन्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वमानोऽसुते देवि मामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा आजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे प्रियो जगत्करो करुणावतारो श्रूयतां श्रूयतां नित्यम् गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चैतन्यचरितामृतम् हरे कृष्ण आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति सोमवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज परम पवित्र दिन है, आज भगवान की परम तिथि एकादशी तिथि है। इसे शास्त्रीय भाषा में माधव तिथि भी कहते हैं और हरिवात्सर भी कहते हैं। आज के दिन यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ये भगवान का अपना कथन है अन्य पुराणों में। तो सभी भक्तों को चाहिए कि आज के दिन भगवान को प्रसन्न रखने के लिए उपवास रखे। उपवास का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है निकट, और वास का अर्थ होता है बैठना। भगवान के ज्यादा से ज्यादा निकट वास करना, इसे उपवास कहते हैं। तो भगवान के निकट वास करने का अर्थ है इस एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसी को उपवास कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर मौका प्राप्त हुआ है कि इस एकादशी के दिन, माधव तिथि के दिन, माधव के गुणगान गाने का और सुनने का। वैसे तो हम यहाँ पर प्रति सोमवार को श्रीमद् भागवतम कथा सुनते हैं, परंतु आप सब जानते हो कि बहुत करीब, बहुत निकट एक बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है। हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव है और इसे गौर पूर्णिमा कहते हैं। साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 523 साल पहले इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। उसी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन बहुत निकट आ रहा है, पूर्णिमा के दिन। तो हमने सोचा कि अब कुछ दिन हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहां पर श्रवण करें। तो श्रीमद् भागवतम को कुछ हफ्ते के लिए रुका करके हम चैतन्य भागवत का आस्वादन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु प्राय यहां पर सब लोग भक्त हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर संसार के लोगों को अपने आचरण से भक्ति सिखाने के लिए आए थे। भगवान बहुत बहुत लीला करते हैं संसार के जीवों को उपदेश देने के लिए, परंतु उन लीला को देखकर संसार के लोग भगवान को समझ नहीं सकते हैं। तब जाकर भगवान को स्वयं उपदेश देना पड़ता है कि इस प्रकार से अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते। द्वापर युग से पहले सतयुग और त्रेता में भगवान कई कई अवतार लेकर आए, फिर भी लोग भगवान की भक्ति में नहीं लगे। तो सतयुग और द्वापर में भगवान, सतयुग और त्रेता में भगवान लीला करके गए, परंतु फिर भी भगवान के ऊपर आस्था नहीं हुई। तब जाकर द्वापर युग में भगवान स्वयं आए और कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े रहकर गीता का ज्ञान दिया कि इस प्रकार से जीवन व्यापन करना चाहिए। और भगवान को आशा थी कि समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का सार यह गीता रूपी शास्त्र को लेकर सब अपना जीवन परिवर्तन करेंगे, परंतु गीता देकर भगवान अपने धाम में चले गए। जाकर देखा कि कलयुग में लोग गीता को अपने जीवन में उतारने की बात तो दूर रही, गीता को पढ़ते नहीं है और पढ़ने की बात भी दूर रही, गीता को जानते तक नहीं। तब ऐसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अपने धाम में बैठकर सोचे कि जब तक मैं इस संसार के जीवों को जाकर आचरण के द्वारा सिखाऊंगा नहीं, तब तक ये संसार के मूर्ख लोग मानेंगे नहीं। भगवान ने गीता दी, बहुत सुंदर शास्त्र दिया, परंतु गीता को लेकर कौन आज भजन करता है। भगवान ने सोचा मुझे स्वयं भक्त बनकर जाना होगा और भक्त बनके दिखाना होगा कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। संसार में यदि कोई बालक नर्सरी में पढ़ता हो और टीचर बोर्ड के ऊपर ए लिख कर दे और कहे अब बालको ए लिखो, तो प्रायः ये बालक अपनी स्लेट पर ए नहीं लिख सकते हैं, तब जाकर टीचर उस बालक का हाथ पकड़कर उस स्लेट पर ए लिखवाती है। भगवान ने सोचा कि मेरे उपदेश से ये लोग अपने जीवन में गीता को धारण नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे स्वयं जाकर भक्त बनकर मुझे दिखाना होगा कि किस प्रकार भक्ति करनी होती है। तो भगवान सोचे कि भक्त बनना है तो किसके जैसा भक्त बनूं? भगवान ने देखा कि संसार में सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट भक्त यदि कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर, यद्यपि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं परंतु श्रीमती राधा रानी के भाव को ले लिए, चुरा लिए। ये भगवान किसी भी अवतार में आते हैं परंतु चोरी करना नहीं छोड़ते हैं। चोराग्य क्रमणम पुरुषम नमामि, ये बहुत बड़े चोर हैं, क्या क्या नहीं चुराते हैं। हमारे गौड़ीय भक्त बहुत सुंदर गाते हैं, ब्रजेत प्रसिद्धम नवनीत चोरम। हमारे ब्रज में एक बहुत बड़ा चोर आया है, क्या चुराता है? नवनीत मक्खन चुराता है। अरे मक्खन चुराए कोई बात नहीं, गोपांग नानम दुकुल पित्त चोरम, गोपियों के वस्त्र भी चुराता है। इतना ही नहीं, संसार का यदि चोर हो तो कोई गहना चुराता है, धन चुराता है, ज्यादा से ज्यादा किसी की गाड़ी चुरा लेता है और उससे भी ज्यादा किसी की किडनी चुरा लेता है। परंतु हमारे ब्रज में ऐसा चोर आया है कि सबका हृदय हार्ट ही चुरा लेता है, और उसमें भी श्री राधिकाया हृदयस्थ चोरम चोराग ग्रहणम पुरुषम नमामि। ये तो राधा रानी का हृदय ही चुरा लेता है, और क्या बताएं, ये चोर नहीं, ये तो सभी चोरों का सरदार है। चोराग्य अग्रणम, चोर नहीं कहा है, चोरों के भी अग्रज चोरों का सरदार है, और ऐसे चोरों के सरदार को हम नमस्कार करते हैं। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर प्रार्थना है कि यदि इस चोर की टीम में कोई शामिल हो गया, यदि कोई इस चोरों के सरदार की टीम में शामिल हो गया तो ये दर दर भटका के रहता है। अर्थात इस चोर की यदि कोई भजन करने लगा तो फिर वह घर पर नहीं रहता है, हमारे कीर्ति प्रभु की तरह कभी भावनगर तो कभी वृंदावन तो कभी मथुरा। और क्या बताए, वह भक्त प्रार्थना करते हैं कि एक बार भी इस चोर का कोई नाम ले ले तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, ऐसा अद्भुत चोर हमारे वृंदावन में आया है। खैर, भगवान चोर है, इसलिए भगवान का एक नाम हरि कहा गया है, हरि इति हरना, जो हरते हैं। तो भगवान श्रीमती राधा रानी का भाव चुरा लिए, और भाव के अनुसार रंग होता है। मान लीजिए आप जब शांत होते हो तो बहुत तेज होता है, परंतु यदि क्रोध आ जाए तो मुंह लाल हो जाता है, ये कान लाल हो जाते हैं, भाव के अनुसार रंग बदलते हैं। तो राधा रानी का उन्नत उज्जवल भाव है, इसलिए राधा रानी का अंग भी गोरा है। तप्त कांचन गौर अंगी, तपाए हुए गरम गरम सोने के समान गौर है। भगवान श्री कृष्ण यद्यपि श्याम वर्ण के हैं परंतु राधा रानी का भाव को जब चुरा लिए तो भगवान गौर हो गए, और गौर होकर वही कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 523 साल पहले इस धराधाम पर अवतरित हुए। और सब अवतारों में भगवान ने किसी भक्त को ग्रहण करने के लिए, अपने धाम में ले जाने के लिए बहुत बहुत योग्यता देखी, पात्रता देखी। भगवान श्री रामचंद्र कि यदि कोई भक्ति करता तब भगवान श्री रामचंद्र उस पर कृपा करते, कृष्ण की यदि कोई भक्ति करे, भजन करे, तब जाकर कृष्ण उन पर कृपा करे, परंतु बिना भजन किए, बिना भक्ति किए उनके सामने जाकर गले मिलाकर पात्रता अपात्रता को देखे बिना शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाला यदि कोई है तो केवल चैतन्य महाप्रभु है। क्योंकि त्रेता युग में जाइए, भगवान श्री रामचंद्र के सामने बाली, खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण सब लोग खड़े थे, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, और नहीं भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की। जो जो व्यक्ति भगवान के शरण में आया उन लोगों ऊपर भगवान ने कृपा की, परंतु सामने से जाकर भगवान ने किसी को गले में नहीं लगाया। कृष्ण अवतार में भगवान आए, साक्षात द्वापर युग में आए, हजारों हजारों लोगों को मारा, पूतना बकासुर अघासुर इत्यादि, परंतु अनुग्रह किस पर नहीं किए, परंतु चैतन्य महाप्रभु, चाहे वह चांडाल हो, पापी हो, म्लेच्छ हो, यवन हो, लोगों के घर घर जाकर गले मिलकर अपनी शुद्ध भक्ति पात्रता भी देते थे और भक्ति भी देते थे। इसलिए महाप्रभु का जब नाम आता है, महाप्रभु को जब प्रणाम किया जाता है, तब रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदान्याय। वदान्याय का अर्थ होता है दानी, परंतु चैतन्य महाप्रभु दानी नहीं है, महादानी है। यद्यपि कृष्ण को करुणा के सागर कहा जाता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, परंतु महाप्रभु ने कृष्ण की महिमा को कम कर दिया, क्योंकि जो व्यक्ति ये यथा माम प्रपद्यन्ते, गीता में भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरे पास आता है उस भाव से मैं उसके सामने वर्तन करता हूं, परंतु महाप्रभु के सामने महाप्रभु ने भाव नहीं देखा, पात्रता नहीं देखी, सभी लोगों को शुद्ध भक्ति प्रदान की। संसार में जो दानी होते हैं किसी को 5 रुपया 10 रुपया प्रदान कर देते हैं, परंतु किसी को धन भी दे देना और धन रखने के लिए पॉकेट भी दे देना, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। धन भी देना और उसको संग्रह करने के लिए पात्र भी देना, ऐसे बहुत कम है। परंतु चैतन्य महाप्रभु अपनी शुद्ध भक्ति तो प्रदान किए, परंतु उस शुद्ध भक्ति को धर कर रखने के लिए पात्रता भी दिए, इसलिए महावदान्य कहा जाता है। तैसे करुणा वरुणालय भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं, और सभी वेद और शास्त्र में कुल मिलाकर करीबन 100 प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। भागवत में ही 3-4 प्रमाण है, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम, ध्येयम सदा परिभव अभिष्ट दोहम इत्यादि। महाभारत में भी है सुवर्ण वर्ण हिमांगो वरांग सचंद नागंधी संन्यास कृत शांति निष्ठा शांति परायण। तो बहुत बहुत प्रमाण है, परंतु यहाँ पर प्राय सब लोग भक्त हैं, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, हम तो महाप्रभु की लीला का श्रवण करेंगे। महाप्रभु का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। बहुत सुंदर जन्म की लीला है और बाल्य लीला भी अद्भुत है। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, जैसे हमने श्लोक का उच्चारण किया, इस लीला का नित्य श्रवण करना चाहिए और चिंतताम चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चैतन्य चरित अमृतम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है ये अमृत के समान है। अमृत को पीना और चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनना, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि अमृत को पीने से मृत्यु से नहीं बच सकते हैं, उम्र बढ़ सकती है या निरोग बन सकते हैं, परंतु यह चैतन्य चरित रूपी अमृत को यदि कोई पान करे तो वह जन्म जन्मांतर के यह पुनर्भवन जन्म के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आइए महाप्रभु की एक बाल्य लीला का श्रवण करें। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि साक्षात कृष्ण है, इसलिए कृष्ण ने द्वापर युग में जिस प्रकार बचपन में लीला की थी वैसी ही लीला महाप्रभु किए हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीला है, लेकिन एक लीला का आज हम श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में इतना ही अंतर है कि भगवान कृष्ण के सामने जो जो लोग आए और भगवान को ठीक नहीं लगे, भगवान ने उसका सफाया कर दिया। पूतना आई, 2-3 दिन की उम्र से ही सफाया शुरू कर दिया। जैसे म्यूनिसिपालिटी वाले रास्ते को साफ करते रहते हैं, जो जो कृष्ण के रास्ते में आए सबको मारते गए, परंतु महाप्रभु किसी को मारे नहीं। कितना भी पाखंडी व्यक्ति भी महाप्रभु के सामने आया, महाप्रभु ने कृपा करके उन्हें शुद्ध भक्त बना दिया। बड़े बड़े लोग, केशव कश्मीरी, इत्यादि जगाए मधाए बड़े बड़े असुर आए, परंतु महाप्रभु ने अपनी कृपा से भक्त बना दिया। तो ऐसा ही एक ब्राह्मण महाप्रभु के पास आया है। एक तैर्थिक ब्राह्मण की कथा आज हम श्रवण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला मुख्य तीन ग्रंथों में पाई जाती है। एक है चैतन्य चरितामृत, जिसकी रचना कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने की है, और एक है चैतन्य भागवत, जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की है। चैतन्य भागवत वास्तव में ये वृंदावन दास ठाकुर और कोई नहीं, ये व्यासदेव जी के ही अवतार हैं। जैसे व्यासदेव जी ने भागवत महापुराण की रचना की है, वैसे ही वही व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए और चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना की, और अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखा है। और एक ग्रंथ है चैतन्य मंगल, जिसकी रचना लोचन दास ठाकुर ने की। और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे चैतन्य कड़चा, जिसकी रचना मुरारी दास ने की है। तो चैतन्य भागवत प्रायः यह चैतन्य महाप्रभु की लीला इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर प्रकार से वर्णन है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में हम कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, आरो एक कथा सुन परम अद्भुत, ये रंग करिया प्रभु जगन्नाथ सुत। जगन्नाथ सुत, चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम शची देवी था। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उस जगन्नाथ के सुत, जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के पुत्र की और एक कथा मैं आपको सुना रहा हूं। परम सुकृत एक तैर्थिक ब्राह्मण कृष्णेर उद्वेशे करे तीर्थ पर्यटन। एक तैर्थिक ब्राह्मण था और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, और कृष्ण की प्राप्ति के लिए वे दर दर भटक रहा था। वास्तव में जो साधु होते हैं वे एक जगह पर नहीं रहते हैं। यदि वे एक जगह पर रहने लगे तो उसे उस जगह में आसक्ति हो जाती है। जैसे आपने शायद कथा सुनी हो, भरत हरि और गोपी चंद, ये दोनों अपना राज रजवाड़े छोड़कर वन में चले गए थे, परंतु उस पेड़ के नीचे एक खिली में आसक्त हो गए। खैर ये प्रसंग अलग है, परंतु साधु जो होते हैं वे घूमते रहते हैं। इसलिए कहा गया है, पानी बहता भला और संत चलता भला। तो यह ब्राह्मण कृष्ण की प्राप्ति के लिए पर्यटन करते रहते थे। षडक्षर गोपाल मंत्रे करे उपासन, गोपाल नैवेद्य विन ना करे भोजन। वे भगवान की भक्ति में बहुत सुंदर मंत्र जाप करते थे और इतने सुंदर शुद्ध भक्त थे कि भगवान को भोग लगाए बिना वे ग्रहण नहीं करते थे। वास्तव में यह साधु का, यह भक्त का लक्षण है, वे केवल भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, भगवान की कृपा ही लेते हैं। और गीता तो यहां तक कहती है, भगवान कहते हैं कि मुझे भोग लगाए बिना यदि कोई खाते हैं तो वो पाप खा रहे हैं। तो ये भगवान को भोग लगाए बिना प्रसाद नहीं खाते थे। देवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते आसीय मिलीला विप्र प्रभुर वाड़िते। तो ये ब्राह्मण भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते 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 एक दिन इस नदिया ग्राम में, जहां पर जगन्नाथ मिश्रा शची देवी और चैतन्य महाप्रभु रहते थे, वहां पर आए। और उस दिन जगन्नाथ मिश्र बाहर घूम रहे थे तो उन्होंने इस ब्राह्मण को देखा, और ब्राह्मण को देखकर, ब्राह्मण के तेज को देखकर जगन्नाथ मिश्रा इस ब्राह्मण को अपने घर पर लेकर आए। निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु ढोले। जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि यह ब्राह्मण निरवधि निरंतर हरे कृष्णा जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं और इसकी आंखों से अजस अविरत अश्रुधारा बह रही है, इसलिए वास्तव में ये शुद्ध भक्त है। तो उस ब्राह्मण को जगन्नाथ मिश्र अपने घर पर लाए। अतिथि व्यवहार धर्म जैन मत है सब कर लेने जगन्नाथ महाशय। अतिथियों के साथ जिस प्रकार से स्वागत करना चाहिए, जिस प्रकार से अतिथि की सेवा करनी चाहिए, जगन्नाथ मिश्र ने उस प्रकार उस ब्राह्मण की सेवा की। अतिथि की बहुत बहुत प्रकार से सेवा की जाती है, परंतु अतिथि की मुख्य सेवा है, सबसे पहले अतिथि को घर पर आते हैं तो सबसे पहले उसे आसन देना चाहिए, लेकिन मुंबई शहर में तो दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, वो जाली बंद होती है, मेन दरवाजा खोलते हैं, पूछते हैं आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, पूरा इंट्रोडक्शन लेने के बाद दरवाजा खोलते हैं। लेकिन अतिथि जो होते हैं सबसे पहले उसे आसन देना चाहिए, फिर पानी देना चाहिए, बाद में कुछ पूछना चाहिए। तो ये अतिथि सत्कार है। आपने करिया तान पाद प्रक्षालन वसीते दिलेन आनी उत्तम आसन। देखिए सबसे पहले उस अतिथि ब्राह्मण के जगन्नाथ मिश्र ने चरण धोए, पाद प्रक्षालन किए। ये हमारे भारत की ये संस्कृति है, रूढ़ी है। खैर अब तो सब बदल गया है, लेकिन पहले जो भी अतिथि आते थे, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप माना गया है, तो भगवान का स्वरूप समझकर अतिथि को प्रणाम करना चाहिए, उसके चरण धोने चाहिए। और वसीते दिलेन आनी उत्तम, और उत्तम आसन प्रदान किया। सुस्त हई वसिलेन यदि विप्रवर तबे ताने मिश्र जिज्ञासीला को था घर। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपका घर कहां पर है, आप कहां से आए हो, आप कहां रहते हो। तो विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी। विप्र ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, मेरा कोई घर वर नहीं है, मैं तो साधु हूं, मैं तो कभी यहां तो कभी वहां। तबे ताने मिश्र चितेर विक्षेपे मात्र पर्यटन करी। मैं तो मेरे चित को सुखी रखने के लिए, शांत रखने के लिए मैं पर्यटन करता रहता हूं। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन। प्रणाम करके जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण को कहने लगे, जग तेरे भाग्य से तुम्हारा पर्यटन। जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण को कहने लगे कि तुम कह रहे हो कि अपने लिए तुम घूमते हो, परंतु वास्तव में तुम्हारे जैसे संत जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए घुमा करते हैं। वास्तव में संत की उपमा गंगा के साथ की गई है। जैसे गंगा निरंतर निर्वध गति से बहती रहती है, और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जितने लोग उस गंगा में स्नान करते हैं पवित्र हो जाते हैं, वैसे संत गंगा की तरह घूमते रहते हैं। परंतु देखा जाए तो गंगा से भी करोड़ों गुना संत जो है वे लोगों पर कृपा करते हैं, क्योंकि गंगा तो केवल गंगोत्री से गंगा सागर तक ही बहती है, केवल भारत के लोगों को ही पवित्र करती है। परंतु प्रभुपाद जैसे संत इस भारत से निकलकर विदेश जाते हैं और पूरे दुनिया को, पूरी पृथ्वी को भक्ति के द्वारा धन्य करते हैं। यह है संत का लक्षण। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि आप जैसे संत लोग का कल्याण करने के लिए घूमते रहते हैं। विशेषतः आज ही हमारा परम सौभाग्य, और आज मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे घर पर आए हो। आज्ञा देई रंधेर करी गिया कार्य। तो हमें आज्ञा दीजिए कि आपके लिए कुछ भोजन बनाए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं किसी के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाता हूं, यदि आपको भोजन खिला नहीं है तो एक काम करो, कच्चा सीधा मुझे दे दो और अपना किचन जो है, अपना रसोई घर साफ कर दो, मैं अपने हाथों से बना लूंगा। और हाथों से बनाकर एक गोपाल जी मेरे साथ में रखता हूं, गोपाल जी को भोग लगाकर मैं प्रसाद खाऊंगा। विप्र बोले करम मिश्र ए इच्छा तुमार रंधेर स्थान उपस करी भाल मते। जब इस प्रकार से ब्राह्मण ने कहा तो जगन्नाथ मिश्र ने रसोई घर किचन साफ करवा दिया, धुलवा दिया, और दिले ने सकल सज्ज रंधन करी थे। और रंधन करने के लिए, पकाने के लिए सभी सामग्री उस ब्राह्मण को दे दी। संतोषे ब्राह्मण वर करी या रंधन, वसीले न कृष्ण रे करी ते निवेदन। वे ब्राह्मण उस रसोई घर में गए और रसोई घर में जाकर बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान के लिए भोग तैयार किए। अब किसी माताजी को भोग बनाना होता तो होता है तो आसान होता है, परंतु प्रभु जब कुछ भी पकाने बैठते हैं, देखा गया है कि कभी कभी प्रभु जी लोग घर पर कुछ बनाते हैं तो लगता है कि किराने की दुकान खुल गई है। कुछ भी ठीक से नहीं होता है सब। तो ये ब्राह्मण भी बहुत महापरिश्रम करके भगवान कृष्ण के लिए भोग तैयार किए और भोग तैयार करके वसीले न कृष्ण रे करी ते निवेदन। और भगवान का विग्रह तो वे साथ में ही रखते थे, शालिग्राम साथ में रखते थे, तो बहुत सुंदर थाली में सभी व्यंजन को सजाकर भगवान के सामने अर्पण किया। और अर्पण करके वे ध्यान करके नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, कृपया करके आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। जब इस प्रकार से वह ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि आप ये भोजन लीजिए, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सर्वभूत अंतर्यामी श्री शची नंदन, शची जगन्नाथ मिश्र और शची माता का जो पुत्र है वे साधारण नहीं है, वे सर्वभूत सभी जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा यही है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये मुझे बुला रहा है, ये मेरा दर्शन चाहता है, मने आछे विप्रेर दिवे न दर्शन, तो मुझे अब उस ब्राह्मण को दर्शन देना ही होगा। तो ब्राह्मण तो ध्यान में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नमो ब्राह्मण देवाय आप भोजन ये भोग ग्रहण कीजिए। तो ध्यान मात्र करीते लागिला विप्रवर, सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। जब विप्र ध्यान कर रहे थे, ब्राह्मण ध्यान कर रहे थे, तो छोटा सा बालक चैतन्य महाप्रभु दौड़कर उस किचन में आया। और ये गोपाल जी को भोग लगाने के लिए रखे थे, तो चैतन्य महाप्रभु वहां जाकर वो स्वयं भोग खाने लगे। धूलामय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर, चैतन्य महाप्रभु बाहर खेल रहे थे, कपड़े नहीं पहने थे, छोटे से थे, एकदम छोटे से बालक थे, और मट्टी में खेल रहे थे, इसलिए पूरे शरीर में मट्टी मट्टी लगी हुई थी। और अरुण नयन कर चरण सुंदर, बहुत ही सुंदर लाल लाल आंखें थी और बहुत ही सुंदर चरण थे। जब इस प्रकार से यह धूली लगे हुए यह बालक यहां उस ब्राह्मण के सामने आकर भोजन करने लगा, तो हासिया विप्रेर अन्न लैया श्री करे, एक ग्रास खाई लेन देखे विप्रवरे। जब चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक ने एक ग्रास खाया और खाकर जब चबाने लगे, तब उस ब्राह्मण की आंखें खुली। आंखें खोलकर देखा तो मैंने कृष्ण को भोग लगाया है और ये बालक आकर खाने लगा। हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके। तो आए और जब खाने लगे, ब्राह्मण की आंख खुली तो हाय हाय करके खड़े हो गए। इतनी महा मेहनत से ये भोग बनाया, इतना सुंदर व्यंजन बनाया और इसने सत्यानाश कर दिया आकर। अन्न शची करी लेकर चंचल बालक है, इस बालक ने तो मेरी पूरी महा मेहनत का सत्यानाश कर दिया। आसिया देखिन जगन्नाथ मिश्रवर, जब इस ब्राह्मण चिल्लाने लगे तो जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिता बाहर बैठे थे, जब उन्होंने सुना, ब्राह्मण की आवाज सुनी, तो वह भी किचन में आए। संभ्रम उठिया विप्र धरी लेन करे, और वहां पर विप्र के पास, ब्राह्मण के पास आकर बोले कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तो विप्र बोले, मिश्र तुम बड़ देखी आर्य, कौन ज्ञान बालकेर। जगन्नाथ मिश्र ने पूछा क्या हुआ, ब्राह्मण ने कहा कि ये आपका बालक मैंने लगाया था कृष्ण को भोग और खा गया आपका पुत्र, ये पूरे भोग को इसने झूठा कर दिया। इतना सुनते ही जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़े और हाथ पकड़ कर मारने गए। जैसे ही मारने गए तो ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्र का हाथ पकड़ लिया। मैंने तो सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत बड़े विज्ञ हो, तो ज्ञानी होकर बच्चे पे हाथ उठाते हो, ये बच्चा क्या जानता है क्या सही है क्या गलत है? और बच्चे कभी मारने से नहीं समझते हैं, बच्चे समझाने से समझते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं, बाल मंद ज्ञान जार था के मारी तारे। बालक क्या जानते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, उसे मारो मत। हमारा शपथ यदि मारा उधारे, यदि आप अपने पुत्र को मारोगे तो मेरी कसम। दुखे वसीले न मिश्र हस्त दिया शिरे। जगन्नाथ मिश्र दोनों हाथ सिर पे रखकर दुखी हो गए कि ब्राह्मण घर पर आए हैं, इतने शुद्ध ब्राह्मण हैं, इतनी मेहनत से उन्होंने भोग बनाया और मेरे ये बालक ने भोग को बिगाड़ दिया। विप्र बोले मिश्र दुख ना बाह्य मने। ब्राह्मण ने कहा, हे जगन्नाथ मिश्र, आप दुखी मत हो। ये दिन ये है वह ता ईश्वर से जाने। ये दिन में कौन से दिन में क्या होने वाला है ये तो भगवान ही जानते हैं। ब्राह्मण ने कहा, फल मूल यदि गृह है ये था कि तोमार। यदि आपके घर पे कुछ फल या मूल कुछ पड़े हुए हो, आने देह आज ही से ही करीब आहार। यदि आपके घर में कुछ फल या मूल कंद हो तो मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। भोग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिश्र बोले, मोरे यदि था के वृत्य ज्ञान। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हो तो आर वार पाक करी देह स्थान। यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हो तो फिर से आप भोग बनाओ, फिर से आप कृष्ण के लिए रसोई घर में जाओ और हम आपको कच्चा सीधा देते हैं, आप फिर से भोग की तैयारी करो। गृह आचे रंधेन सकल संभार, पुन पाक करे तवे संतोष अमार। मैं आपके लिए फिर से रसोई घर किचन साफ करवा देता हूं और आप जब फिर से भोग बनाओगे, भगवान को खिलाओगे और आप खाओगे, तभी हम संतोष होगे, नहीं तो मेरा दुख कभी नहीं जाएगा। बलिते लागिला तबे इष्ट बंधु गण, आमा सभा चाही तबे करह रंधन। जितने भी लोग बाजू में थे सब लोग कहने लगे, कृपया करके आप रंधन कीजिए, आप भगवान के लिए भोग पकाइए। विप्र बोले, यही इच्छा तोमा सभाकार, करीब रंधन सर्व थाय पुनर्वार। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो मैं अब दूसरी बार ठाकुर जी के लिए भोग बनाता हूं। अब आप कल्पना कीजिए, यदि 8 बजे यह भोग बनाना पहली बार प्रारंभ किया था ब्राह्मण ने, यदि स्त्री होती तो 1 घंटे में बना लेती, परंतु ये ब्राह्मण है, पुरुष है, तो उसे 2-2.5 घंटा तो लगा ही होगा। तो 8 बजे शुरू किया था तो 9, 10, 10:30 बज चुका। 10:30 बजे महाप्रभु ने गड़बड़ कर दिया, आधा घंटा डिस्कशन में गया, 11 बज गया और 11 बजे दूसरी बार भोग बनाने के लिए बैठे। हरिश हैला सब विप्रेर वचने। जब ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूसरी बार भोग बनाता हूं, रसोई घर में गए तो सभी लोग हर्षित हुए, जगन्नाथ मिश्र भी प्रसन्न हुए। रंधेन सज्ज आनि देलेन तुरिते, चली लेन विप्रवर रंधन करीते। विप्रवर व ब्राह्मण बहुत सुंदर कटिंग किए सब्जी का और बहुत सुंदर तड़का दिए, बहुत सुंदर रोटी बनाए, खीर बनाए, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन ये सब बना रहे थे। तो सभी लोग जो बाहर खड़े थे सब लोगों ने कहा कि सभी बोले न शिशु परम चंचल, ये बालक ये चैतन्य माँ ये बहुत चंचल है। आर बार पाछे नष्ट करे ये सकल, अब ये दूसरी बार सारा भोग बिगाड़ न दे, इसके लिए आप इसको कैसे भी करके दूर लेकर चले जाओ। रंधन भोजन विप्र करे न यावत, आर बाड़ी लये शिशु राखह तावत। जब तक ये ब्राह्मण भगवान को भोग नहीं लगा देता है तब तक इस बालक को किसी दूसरे कमरे में लेकर चले जाओ। तबे शची देवी पुत्र कोले ते करिया, चल लेन आर बाड़ी प्रभु रे लैया। तब चैतन्य महाप्रभु की माता अपने पुत्र चैतन्य महाप्रभु को गोद में लेकर एक कमरे में चली गई। सभे नारी गण बोले, केने रे नी माई। उस कमरे में कई सारी स्त्रियां थी और शची देवी उस बालक को वहां पर लेकर गई और जितनी स्त्रियां बैठी थी, चैतन्य महाप्रभु का बचपन में नाम निमाई था, तो कहने लगी, केने रे निमाई, क्यों रे निमाई। एमते करिया कि विप्र अत्र खाई, बिचारे विप्र ने इतनी महा मेहनत से भोग बनाया था और आपने ऐसे ही खा लिया। सब हासिया बोले न प्रभु श्री चंद्र वदने, जब इस प्रकार से सभी स्त्रियों ने कहा कि क्यों तूने खा लिया ब्राह्मण का भोजन, तब चैतन्य महाप्रभु अपनी तोतली भाषा में कहते हैं कि आमार की दोष, बताओ इसमें मेरा क्या दोष है। विप्र डाकी ना आपने, वे ब्राह्मण ने ही मुझे बुलाया, ब्राह्मण ने मुझे बुलाया और मैं जाकर खाया, तो इसमें मेरा क्या दोष है। ये सच बात है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात बजेंद्र नंदन कृष्ण है और ब्राह्मण ने क्या कहा था, नमो ब्राह्मण देवाय, हे कृष्ण आप आकर भोजन करो। तो महाप्रभु झूठ नहीं बोल रहे हैं। कोथाकार ब्राह्मण कौन कुल केवा चीने, सभी स्त्रियों ने कहा कि ब्राह्मण कहां से आया है, कौन से कुल का है, शूद्र है, क्या है, तुम्हें कुछ नहीं पता है और तुम उसके हाथ से खाना खाना प्रारंभ कर दिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमी गोपाल, अरे मैं तो गोपाल हूं, गायों का पालन करने वाला हूं और गायों का पालन करने वाला ब्राह्मण का भोजन खाए इसमें कोई गलत नहीं है। छले निजे तत्व, चैतन्य महाप्रभु अपने तत्व का प्रकाशन कर रहे थे कि मैं ही कृष्ण हूं, परंतु लोग भगवान की माया से समझ नहीं सके। सब ही हासे न प्रभु सुनीर वचन, वक्ष हेते एडीते काहारो नहीं मन। सब लोग इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की तोतली भाषा को सुनते सुनते महाप्रभु के मन में निमग्न हो गए। हासिया जाए न प्रभु ये जनार कोले, सही जन आनंद सागर माजे हरे। चैतन्य महाप्रभु को जो अपने गोद में बिठाता वे आनंद के सागर में मग्न हो जाता, क्यों नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण साक्षात आनंद की मूर्ति है, जो सच चिद आनंद के घन स्वरूप है, जिसके शरीर से नित्य आनंद प्रकट होता है। कृषि भूवाचक नच निवृत्ति वातक, जिसके शरीर से 2448 घंटा आनंद ही प्रकट होता है। वे प्रभु जिसकी गोद में बैठे हैं उसे आनंद हो, ये कोई आश्चर्यमय बात नहीं है। सही विप्र पुनर्बार करी या रंधन, अब आइए उस किचन में। ब्राह्मण ने दूसरी बार बहुत ही, अब 11 बजे भोजन शुरू किया था बनाना, तो 12-1 बजे भोजन तैयार हो गया। 1 बजे इन्होंने भोजन तैयार किया। लागी लेन बसिया करी ते निवेदन, भोग तैयार हो गया, सुंदर थाली में सजाया, ठाकुर जी को रखा, शालिग्राम शिला को रखा, थाली लगाई और ध्याने बाल गोपाल भावेन विप्रवर, और ध्यान करने लगे, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु कृपया करके आप इस भोग को ग्रहण कीजिए और इसे प्रसाद बनाइए। जैसे ही ब्राह्मण ने इस प्रकार से ध्यान किया तो जानी लेन गौरचंद्र चितेर ईश्वर, गौरचंद्र उस रूम में बैठे थे माता के साथ, परंतु वे तो ईश्वर हैं। वेदा हम समतितानी, सब जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानते हैं। वे जान गए कि वे ब्राह्मण मुझे बुला रहे हैं। मोही या सकल लोक अति अलक्षिते, आई लेन विप्रस्थाने हासिते हासिते। उस रूम में जितने भी स्त्रियां थी वे स्त्रियों को अपनी तोतली भाषा में बोलकर बोलकर इतनी मंत्र मुग्ध कर दी कि वे सब लोग भूल गए कि यह चैतन्य कहाँ है, और सब लोग वहां पर बैठ कर रह गए। और चैतन्य महाप्रभु छिप करके निकल गए उस कमरे से और उस ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण ध्यान में बैठे थे भोग लगाने के लिए, ये चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार आए और भोग खाना प्रारंभ किए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जब दूसरी बार भोग खाया तो कहते हाय हाय करिया उठिला विप्रवर, ब्राह्मण हाय हाय करके खड़ा हो गया। अरे बाप रे बाप, 5-6 घंटा इसमें निकल गया, दूसरी बार भोग बनाया उसे सत्यानाश कर दिया। ठाकुर आईला भाल दिला एक रड़, जगन्नाथ मिश्र दौड़ कर वहां पर आए। संभ्रम में उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लैया, क्रोधे ठाकुर लैया जाय धायो आइया। और दौड़कर चैतन्य महाप्रभु के प्रीता जगन्नाथ मिश्र दौड़कर आए और चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ में राइस था, चावल था, खा रहे थे तो हाथ को पकड़ लिया और क्रोध करने लगे। महाभये प्रभु पला इला एक घरे, जब इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र ने उसे पकड़ा तो चैतन्य महाप्रभु वहां से भागे और एक रूम में जाकर छिप गए। क्रोधे मिश्र पाछे ठाकी तर्ज गर्ज करे, और जगन्नाथ मिश्र हाथ में लकड़ी लेकर चैतन्य महाप्रभु के पीछे भागने लगे उसे मारने के लिए। मिश्र बोले आजी देख करो तोर कार्य। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि आज तुझे सबक सिखा करी रहूंगा, तोर मते परम अबुद आमी आर्य। हेन महाचोर शिशु कार घर आछे, एत बली क्रोधे मिश्र धाये प्रभु पाछे। जगन्नाथ मिश्र मन में यह कह रहे थे महाप्रभु को कि ऐसा चोर ऐसा पाखंडी लड़का किसी के घर पर नहीं होगा। यद्यपि साक्षात बजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण उनके घर पर खेल रहे हैं, परंतु वे कहते ऐसा पाखंडी आज की तारीख में किसी के घर पर नहीं होगा, यह मेरे घर पर इस प्रकार से उत्पात मचा रहा है। सबे घरे लेना यत्न करी या मिश्रेरे। मिश्र बोले यही आज मारी बहुआरे। सभी घरों में जाकर किसी भी घर के महाप्रभु को पकड़ रहे थे और कह रहे थे कि आज तो कैसे भी करके इसको मार कर ही रहूंगा। सभी बोले न मिश्र तुम्ही तो उदार, उहारे मारिया कौन साधुत्व तुम्हार। सब लोग जगन्नाथ मिश्र को समझा रहे थे कि आप तो उदार दिल के हो, इस प्रकार से बालक को मारना ये साधु का लक्षण नहीं है, आप तो साधु हो, इस प्रकार से बालक को नहीं मारना चाहिए। भाल मंद ज्ञान नाही उहार शरीरे। इस बालक को भाल, भाल का अर्थ था अच्छा, क्यों प्रभु जी? प्रभु जी बंगाली है बहुत, ये मुझसे अच्छा तो प्रभु जी जानते हैं। तो भाल का अर्थ होता है अच्छा और मंद का अर्थ होता है बुरा। तो कहते भाल मंद अच्छा बुरा क्या है ये बालक क्या जानता है। परम अबोध जे एमन शिशु मारे, ये तो अबोध बालक है इसे क्यों मार रहे हो। मारी ले कौन वा सीखी वह है न नहीं, मारकर आप इस बालक को क्या सिखाओगे। स्वभाव ही शिशु र चंचल मति हो, बालक का तो स्वभाव होता है कि इस प्रकार से चंचलता, इस प्रकार से उत्पात। आथे व्यथे आसी से ही तेर्थिक ब्राह्मण मिश्र घोरिया हाथे बोले न वचन। बालक केर नाही दोष सुनी मिश्र राय, ये दिने ये है व ताहर ही बारे चाय। ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के पास आए और आकर प्रार्थना करने लगे कि ये बालक का कोई दोष नहीं है, भगवान की ही इच्छा है कि आज भगवान मुझे खिलाना नहीं चाहते हैं, ये प्रभु की इच्छा है। आज ही कृष्ण अन्न नाही लिखे ना हमारे, आज कृष्ण मेरे नसीब में अन्न नहीं लिखे हैं, इसलिए दो दो बार परिश्रम करने के बाद भी मुझे अन्न नहीं मिल रहा है। सबे यही मर्म कथा कही लो तुम्हारे। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुख। जगन्नाथ मिश्र तो इतने दुखी थे, शर्म के मारे उसका मुख झुक गया और वे अपना सिर ऊपर नहीं कर सकते थे, और माथा हेट करी या भावे न महादुख। अपना माथे को नीचे करके, हेट मतलब माथा नीचे करके, सिर झुका कर अपने सिर को ऊपर नहीं कर सकते थे। हे नहीं समय विश्व रूप भगवान, अब क्या करें। अब जगन्नाथ मिश्र के हाथ से सब चला गया और ब्राह्मण ने कह दिया कि अब मैं नहीं बनाऊंगा, फाइनल डिसीजन, अब मैं थक गया, 5-6 घंटे यह सब मेहनत परिश्रम, अब हम नहीं बनाएंगे। तो जगन्नाथ मिश्र तो अपना सिर झुकाकर बैठ गए, अब क्या करें। तब इस कहानी में और एक पात्र जुड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा भाई था और उसका नाम था विश्वरूप। तो वृंदावनदास ठाकुर अब विश्वरूप के एंट्री कर रहे हैं इस कहानी में। हे नहीं समय विश्वरूप भगवान, सही स्थाने आई लेन महाज्योति धाम। उस वक्त जब जगन्नाथ मिश्र दुखी होकर अपना सिर झुकाकर बैठे थे, वो ब्राह्मण भूखे अतिथि बैठे थे, रात को 11 बज चुके थे, 11 ही बजे ना, नहीं 1 बज चुके थे, रात को 1 बज चुके थे और बिल्कुल बहुत करुण वातावरण था। तब चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप वहां पर आए, जो बहुत ही तेजस्वी थे। सर्व अंग निरूपम लावण्यर सीमा, चतुर्दश भुवन एवं नाही को उपमा। सर्व अंग सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप था और 14 भुवन में विश्वंभर विश्वरूप जैसा कोई बालक नहीं था। स्कंद यज्ञ सूत्र ब्रह्म तेज मूर्तिमंत, ब्रह्म का तेज मूर्तिमान तेज था और मूर्ति भेदे जन्मिला आपने नित्यानंद, और नित्यानंद प्रभु का ही स्वरूप यह विश्वरूप था, यह विश्वरूप बलदेव जी के ही स्वरूप है। सर्व शास्त्रेर अर्थ सदा स्फुरिय जिह्वाय, सभी शास्त्र इस विश्व रूप के जीवा पर थे, सभी शास्त्र को जानने वाले थे। देखिए अपूर्व मूर्ति तैर्थिक ब्राह्मण मुग्ध हई एक दृष्टि चाहे धने धन। अब ब्राह्मण भोजन का सब भूल गए, यह विश्व रूप के स्वरूप को देखकर ब्राह्मण मुग्ध हो गए। और विप्र बोले, कार पुत्र ये महाशय, ये महाशय किसके पुत्र है, जरा मुझे बताएंगे। सब यही बोले न, यही मिश्र त नहीं। सब लोगों ने कहा कि ये जो सिर झुकाकर बैठे हैं, ये जगन्नाथ मिश्र के ही पुत्र हैं और ये चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई है। सुनिया संतोषे विप्र केला आलिंगन, धन्य पिता माता जार हे ए नंदन। उस ब्राह्मण ने कहा कि जिसका यह पुत्र है उसके माता पिता तो धन्य है ऐसे पुत्र को पाकर, क्योंकि ऐसे पुत्र तो बहुत कम लोगों के होते हैं। विप्रेर करिला विश्व रूप नमस्कार, बसिया कहन कथा अमृतेर धार। अपनी अमृतमय वाणी से उस विश्व रूप ने ब्राह्मण को कहा कि आप कृपया करके आसन पर बैठिए, विराजिए। शुभ दिन तार महाभाग्यर उदय, तुम ही है न अतिथि जाहरा गृह है। आप जैसे अतिथि, आप जैसे ब्राह्मण जिसके घर पर आते हैं, उसके घर के उस दिन से मंगल प्रारंभ हो जाता है। और आज आप हमारे घर पर आए हो अतिथि के रूप में, आज हमारा परम सौभाग्य है। जगत शोधित से तुम्हारा पर्यटन, जगत को पवित्र करने के लिए ही आप जैसे संत जगत में परिभ्रमण करते हैं। भाग्य बड़ तुम ही है ना अतिथि अमार, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप अतिथि के रूप में हमारे घर पर आए हो। तुम ही उपवास वा करीबा जार घरे, सर्वता ताहर अमंगल फल धरे। आप जिसके घर पर एक क्षण के लिए भी रह जाओ, उसके घर पर जितना भी अमंगल होता है वह समाप्त हो जाता है। हरेश पायलू बड़ तुम्हारा दर्शन है, और आपका दर्शन करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। विप्र बोले, किचु दुख ना भावी है मने, फल मूल किचु आमी करीब भोजने। विश्व रूप ने कहा कि आप इस प्रकार से हमारे घर पर आए हो, इसलिए कृपया करके आप हमारे घर पर भोजन करो। और भोजन करने के लिए मैं जानता हूं कि आप हमारे हाथ का बनाए हुए नहीं खाओगे, इसलिए हम आपको कच्चा सीधा दे देते हैं, रसोई घर साफ करवा देते हैं, कृपया करके आप अपने हाथ से भोजन बनाकर खा लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत थक चुका हूं, इसलिए फल मूली किचु आमी करीब भोजन है, इसलिए कुछ फल या मूल आपके घर पर पड़ा हो तो मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। कहते वनवासी आमी अन्न कोथाई वा पानी, वैसे भी हम वन में रहने वाले ब्राह्मण है और वन में ऐसे भी यह अन्न इत्यादि नहीं मिलता है, हम फल खाकर ही जीते हैं। प्राय आमी वने फूल मूल मात्र खाई, हम वन में ये फल मूली खाते रहते हैं। कदाचित कौन दिवसे वा खाई अन्न, कभी किसी दिन अन्न खाने मिल जाता है, सेहो यदि अवरोधे हय उपसन्न। जे संतोषे पाई लाई तोमा दर्शने, हे विश्वरूप आपका दर्शन देकर मैं सभी चीज सभी भोग सभी रूप के प्रसाद खाने का जो आनंद होता है प्राप्त कर लिया हूं, अब मुझे कुछ भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। फल मूल नैवद ये किचु तार था के ताहा आन गिया आजी करीब आहारे, यदि फल मूल पड़े हो तो मुझे दे दो, मैं खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। उत्तर ना करे किचु मिश्र जगन्नाथ, दुख भावे मिश्र शिरे दये दुया हाथ। जगन्नाथ मिश्र तो अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर कुछ बोल नहीं रह सकते थे, क्योंकि दो दो बार बिगड़ गया था सब। विश्व रूप बोले न बलिते वासी भई, सहजे करुणा सिंधु तुम ही महाशय। लेकिन विश्व रूप बहुत बोलने में पटु थे, वे उस ब्राह्मण को कहने लगे, आप तो करुणा के सागर हो, आप तो करुणा सिंधु हो। पर दुखे कातर स्वभावे साधु जन, जो साधु होते हैं वे दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। परेर आनंद से बाढ़ाई अनुक्षण, और साधु जो होते हैं दूसरों के आनंद को देखकर आनंदित होते हैं। तो विश्व रूप ने कहा कि यदि आप भोजन नहीं करोगे तो हम दुखी हो जाएंगे, और यदि आप भोजन करोगे भोजन बनाओगे तो हम सुखी होंगे। तो हमारे सुख में यदि आपका सुख है तो कृपया करके आप भोजन बनाइए। तवे आजी आमार गोष्ठीर जन दुख, सकल घुचये पाई परमानंद सुख। यदि आप भोजन बनाओगे तो हम लोग परम आनंद का अनुभव करेंगे। विप्र बोले, रंधन करिलु दुई बार, त तथा प्रिय कृष्ण ना दिले लखाई वार। ब्राह्मण ने कहा कि मैं दो दो बार बना चुका हूँ, आप तो अभी घर पर आए, आप नहीं जानते हो, दो बार दो ही बार भोजन बना चुका हूँ, परंतु कृष्ण की इच्छा ही नहीं है कि मैं भोजन करूं। तेई बुझी लाम आजी नाही क लिखन, कृष्ण इच्छा ताही के ने करे ये यतन। कृष्ण की इच्छा है कि मैं आज भोजन न करूं, क्योंकि कोटि भक्ष्य द्रव्य यदि थाके निजे घरे, यदि किसी के घर पर करोड़ों करोड़ों रुपये हो परंतु कृष्ण की इच्छा न हो तो वे पूरा दिन उपवास रहेगा। ये होता है, करोड़ों रुपये रखने वाले को डायबिटीज होती है, मीठा नहीं खा सकते। तो करोड़ों रुपये होने के बाद भी कृष्ण की इच्छा नहीं है तो कोई भोजन नहीं कर सकता है। और जे दिने कृष्ण ने जारे लखन न हई, कोटि यत्न करी तथा पित सिद्ध नहीं। और जिस दिन कृष्ण की इच्छा नहीं होती है कि ये भोजन करे, तो कितना भी प्रयास करे वे भोजन नहीं कर सकता है। और निशाओ प्रहर रेह दुई हो वा जाए, रात के एक बज चुके हैं और आप मुझे भोजन बनाने के लिए कह रहे हो। यहां ते कि आर पाक करी ते जुआए, एक बजे मैं भोजन बनाऊं, अते वह आज ही यत्न ना करी है आर, इसलिए आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। विश्वरूप बोले न नाही का किछु दोष, विश्वरूप ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है, तुम ही पाक करी ले से सामार संतोष, यदि आप भोजन बनाओगे तो हमें बहुत संतोष होगा। एक बलि विश्वरूप धरीला चरण, साधी ते लागीला सबे करी तरंधन। इस प्रकार से विश्वरूप उस ब्राह्मण के चरण को पकड़ लिए और ब्राह्मण के चरण को पकड़ कर कहे कि हे ब्राह्मण देवता, आपको भोग बनाना ही पड़ेगा, यदि आप भोग नहीं बनाओगे तो मैं आपके चरण को नहीं छोड़ूंगा। जैसे इस प्रकार से विश्वरूप ब्राह्मण के चरण को पकड़ लिए तो जितने भी लोग खड़े थे ब्राह्मण को कहने लगे, अब बना लीजिए ना, विश्वरूप आपका चरण पकड़ रहा है तो बना लीजिए। चली लेना विप्रवर करी ते रंधने, जब सब लोगों ने इस प्रकार से अनुमोदन किया आप बना लीजिए भोग, तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है अब तीसरी बार बना लेते हैं। तो चली लेना विप्रवर करी ते रंधने, तो विप्रवर ब्राह्मण भोजन बनाने के लिए उस किचन में जा रहे हैं तीसरी बार, तो ब्राह्मण को भोजन बनाने के लिए जाने दीजिए, हम भी घर जाते हैं, घर जाकर भोजन करते हैं और सो जाते हैं। अगले सोमवार को देखेंगे कि उस किचन में क्या होगा, भगवान कौन सी लीला करना चाहते हैं, ये अगले सोमवार को श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।